आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में मैं अनुराग अन्वेषी एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों स्वीकार कर मेरा नमस्कार। दोस्तों कोरोना महामारी के इस दौर में हम और आप रोज बुरी खबरों से रूबरू हो रहे हैं। जाहिर है इन खबरों से हम किनारा नहीं कर सकते। स्थिति का सामना हमें हर हाल में करना ही है और इसके लिए जरूरी है कि अच्छे बुरे तमाम हालात पर हमारी नजर हो। इन सब बातों के साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी ओर से सजग रहें, संक्रमण से बचने के लिए हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करते रहें। आइए जानें आज का हाल। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 216,642 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन इसके साथ ही 117,825 लोग ठीक भी हुए, जबकि 1,182 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गुरुवार को देश में सबसे ज्यादा 61,695 नए मरीजों की पहचान महाराष्ट्र में हुई। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा, जहां 22,339 लोग संक्रमित पाए गए। दिल्ली में बीते दिन 16,699, छत्तीसगढ़ में 15,256, कर्नाटक में 14,738 और मध्य प्रदेश में 10,166 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भारत में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 15,63,588 हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 1,42,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,25,00,000 मरीजों ने इस वायरस को मात दिया है। मुंबई में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 1 मई सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन मुहिम के तहत राज्य में 15 दिनों तक धारा 144 लगा दी है। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को बताया कि लोगों की आवाजाही और गैर आवश्यक सेवाओं पर रोक लगाई जाएगी। बता दें कि धारा 144 लागू करने का मतलब यह है कि एक साथ 5 या इससे ज़्यादा लोग सार्वजनिक स्थानों पर खड़े नहीं हो सकते। 5 या इससे ज़्यादा लोगों के एक साथ यात्रा करने पर भी पाबंदी रहेगी। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क निकलने पर प्रतिबंध है। हालांकि सरकार ने ज़रूरी सेवाएँ जारी रखी हैं। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं होगी। यात्री अपना टिकट दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। कर्फ्यू पास भी आवंटित किए जाएंगे। रेस्तरां में बैठकर खाने की पाबंदी होगी, लेकिन भोजन की होम डिलीवरी हो सकती है। साथ ही राजधानी में मॉल, स्पा और जिम अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। वहीं वीकेंड में अलग अलग जोन में बाजार बारी बारी से खोले जाएंगे। वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत आज शुक्रवार रात 10 बजे से होगी। यह सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ में हिस्सा लेने आए निर्वाणी अखाड़े के संत कपिल देव की गुरुवार को मौत हो गई। कपिल देव कोरोना पॉजिटिव थे और देहरादून के कैलाश अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले आज ही हरिद्वार महाकुंभ में शामिल होने वाले 100 तीर्थयात्रियों और 20 संतों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। बीते एक हफ्ते के दौरान हरिद्वार में महाकुंभ स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले 2 शाही स्नान जैसे बड़े कार्यक्रमों के दौरान क्रमशः 31,00,000 और 14,00,000 लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। इस दौरान हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 दिनों में हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बीच निर्वाणी अखाड़े के संत कपिल देव की कोरोना से हुई मौत ने हालात को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में हर दिन मिल रहे संक्रमित संतों व श्रद्धालुओं को देखते हुए गुरुवार को निरंजनी अखाड़े ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अखाड़े ने यह फैसला किया है कि 17 अप्रैल को कुंभ मेला समाप्त कर दिया जाएगा। पुरी ने इस दौरान अन्य अखाड़ों से भी मेला समाप्त करने की अपील की है और कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हित में मेले का समापन हो जाना चाहिए। दिल्ली हिंसा के आरोपी जवाहरलाल विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गुरुवार को जमानत दे दी गई। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने खालिद को जमानत देते हुए शर्त रखी है कि उन्हें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा, उसे कोर्ट की हर तारीख पर पेश होना होगा। वह न तो गवाहों को प्रभावित कर सकेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश करेगा, समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करेगा। इन शर्तों के साथ साथ कोर्ट ने कहा कि खालिद उमर को खजूरी खास के SHO को अपना मोबाइल नंबर देना होगा और हर समय मोबाइल ऑन रखना उसके लिए अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को दिल्ली दंगों के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए आरोपी बनाया था। गूगल अपनी अहम सर्विस गूगल फोटोज़ के नियम 1 जून से बदल रहा है। इस नए अपडेट के तहत 1 जून 2021 से आपके द्वारा अपलोड की जाने वाली कोई भी नई फोटो और वीडियो उन 15 GB स्टोरेज में ही गिने जाएंगे जो यूजर्स को उपलब्ध कराया जाता है या फिर जिसे यूजर्स गूगल वन मेंबर के तहत खरीदते हैं। हालांकि सर्विस का असर 1 जून से पहले गूगल फोटोज़ में सेव किए गए फोटो पर लागू नहीं होगा। 1 जून के बाद हाई क्वालिटी के फोटो और वीडियो को 15 GB की सीमा में रखा जाएगा। कम क्वालिटी वाले फोटो पहले की तरह आप सेव कर सकेंगे। राजस्थान में तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप से आज राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के 5 इलाकों में मौसम बदलने के आसार हैं। इस दौरान धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 16 अप्रैल को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर के इलाकों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम ने बताया कि इस दौरान मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राजस्थान के इन 5 इलाकों में धूल भरी आंधी और तेज गर्जन के साथ बारिश के कुछ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं शनिवार को जयपुर और भरतपुर में मौसम बदलेगा, यहां दोपहर बाद बारिश होने की संभावना है। वहीं दिन में धूल भरी आंधी आ सकती है। ये खबरें आप News18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।